ओम शांति। हम सभी के मध्य में आदरणीय सुमन दीदी जी उपस्थित हैं। हम सब जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप भगवान की बगिया के चैतन्य फूल बन करके इस ईश्वरीय ज्ञान योग को अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन को खुशबूदार बनाया है, अपने जीवन को महकाया है और आपने अपनी खुशबू से अनेकों को भी वो प्रेरणा दी है कि वो खुशबू, वो चमक अपने जीवन में कैसे भरें। 1963 से आपने बाबा के इस ज्ञान को अपने जीवन में लाया, परंतु कुछ लौकिक बंधनों के कारण आप थोड़ा समय बंधन में रहे और उन सारे बंधनों को बाबा के प्यार में आपने कैसे पार किया या उन सब बंधनों को कैसे समाप्त किया। उसके बाद 1973 से आप बेहद सेवाओं में, बाबा के प्यार में सेंटर पर आकर के रह करके अपनी समर्पित रूप से सेवाएं कानपुर में दी और बहुत सारे सम्मेलन में आपने भाग लिया है। यूथ विंग और इंजीनियर विंग के आप फैकल्टी मेंबर हैं। बहुत सारी सेवाएं आप बहुत अच्छे रूप से करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी करते हैं। बहुत सारी बहनों को आप बहुत सुंदर गाइड भी करते हैं। विदेशों में भी जाकर के आदरणीय दीदी जी ने सेवाएं की हुई हैं। तो हम सबके सामने आज ऐसी विशेष मूर्ति या कहेंगे बाबा का ऐसा सुंदर पुष्प हम सबके मध्य में है। तो आज हम सब अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाएं, अपने जीवन में कौन सी ऐसी धारणा लाएं जो बाबा की शिक्षाओं को अपने अंदर धारण कर सकें, वो सारी बातें आज हमको दीदी जी सिखाएंगे। और बहुत समय तक बड़ों का सानिध्य होने के कारण बहुत सुंदर अनुभव है दीदी के। तो अभी हम सब आदरणीय दीदी जी से सुनते हैं। सुमन दीदी जी,
ओम शांति। आप सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। प्राण बाबुल के प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमने अपने दिल से उस परवरदिगार को पहचान लिया है। मन चित उसी में लगा हुआ है कि वो हमारा हर क्षण रक्षक भी है, हमारा कल्याणकारी है, हमारे दुख दर्द को सुन के असंभव को भी संभव कर देता है। हमारी कितनी बीमारी में भी वो हमारा रक्षक बन के, हमको साथी बन के हमारा साथ देता है। हम कहते हैं बाबा तो हमारा सर्वशक्तिवान है, और सर्वशक्तिवान ही नहीं वो भोला भी है और परम दयालु भी है। एक बार हम उसको दिल से पहचान के कहते मेरा बाबा, वो 100 बार कहता मेरे लाडले, मेरे सिकिल दे, मेरे प्यारे, मेरे कई वर्षों से बिछड़े हुए मेरे भक्त बच्चे, मैं तुम्हारा हूँ। तुम कभी मेरे से अपना हाथ नहीं छुड़ाना, मैं हर समय तुम्हारा नवैया बन के तुम्हारी नैया को पार करूँगा। कभी हिम्मत मत हारना और कभी माया को माया नहीं समझना, क्योंकि परिस्थितियां तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जीवन के अंदर, ब्राह्मण जीवन में बहुत सारा पुराना कितने जन्मों का हिसाब किताब होता है, कितनी आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब होता है, करीब कभी शरीर के बीमारियों में हमारा हिसाब किताब होता है। तो कभी कभी ऐसे संकल्प आता है, हमने तो भगवान को पहचाना है, फिर भी भगवान हमारा इस समय साथ क्यों नहीं दे रहा है। इस व्यक्ति के साथ तो मैंने कभी जीवन में बुरा नहीं किया, लेकिन ये मेरे साथ ऐसे संकल्प क्यों कर रहा है। तो उस समय हमारे प्रश्नों का उत्तर यही मिलता है, ये माया नहीं, ये हमारा पेपर है, ये हमारे बाबा ने हमें सिखाया है। बच्चे जो भी पेपर आता है उसको बुरा नहीं समझो, ये पेपर हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है। और जब हमारे अंदर ये विश्वास का अंकुर फूट पड़ेगा कि यह हम ब्राह्मण जीवन में जो हमने प्रवेश किया है, या हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बने हैं, तो कोई ऐसे ही नहीं बने हैं, उस प्रभु ने हमें चुना है। और उसने मेरे मुझको कहा, तुम मेरे बहुत बहुत करीबी बच्चे हो, और कोटों में कोई और कोई में भी कोई और कोई में भी कोई एक बच्चे हो। सोचो, भगवान की नजरों ने हमें पहचान लिया, तुम मेरे बच्चे हो, तो हम कैसे अपने नजरों को परमात्मा के आगे से झुकाएं कि बाबा तुम मेरे हो या नहीं हो, बाबा तुम मेरे हो। तो बहुतों को आज की दुनिया की मायावी दुनिया को देख के ऐसे भी संकल्प आते हैं कि बाबा तो हम बच्चों को बताते हैं, बच्चे तुम संकल्प की सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हो, अर्थात जो संकल्प करो वो दूसरों के लिए सिद्ध या तुम्हारे हर कार्य के लिए सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर संकल्पों की सिद्धि ना आने का कारण क्या है? अपने दिल से पूछो, क्या हम नहीं चाहते कि हमारे संकल्पों की सिद्धि हो और हम सिद्ध पुरुष बने इस इतने बड़े जहान में? जरूर से आप लोगों को संकल्प होता होगा, लेकिन संकल्पों की सिद्धि के लिए करना क्या है? आप उत्तर देंगे, अखंड योग करें। लेकिन जब कभी हम योग करने बैठते हैं और मन किसी बात से, किसी पेपर से भारी होता है, तब उस समय हमारे अंदर या तो व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, या किसी ने मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो नकारात्मक विचार चलना शुरू हो जाते हैं, और वो इतना सारा समय हमारा खराब कर देते हैं कि न केवल खराब ही करते हैं लेकिन हमारे स्थिति को बिगाड़ देते हैं, और हम बहुत अपने को निराश और परेशान अनुभव करने लगते हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया, ये व्यर्थ संकल्पों को जीतेंगे नहीं तो तुम्हारे संकल्प सिद्ध नहीं हो सकेंगे। अभी इन व्यर्थ संकल्पों को जीतने के लिए हमें क्या करना है? आपने अभी जो अभी विगत मुरलियां हुई हैं, उसमें आपने सुना होगा कि ब्रह्मा बाबा अटल निश्चय के आधार से बाप के बने और एक सेकंड में बाप के बने। हम बाबा के जो सरेंडर बच्चे हैं, हम भी अखंड अटल निश्चय के आधार से बाबा के बने। तो ये अटल निश्चय क्या है? ये अटल निश्चय आपको भी होगा जरूर से। अगर आपको ना होता तो आप इतने परिवार में रहते हुए प्रतिदिन बाबा की क्लास में आना, मुरली सुनना, मेडिटेशन करना, अपने जीवन में पवित्रता की धारणा करना, ये क्या स्थिति स्पष्ट करती है? आपको बाबा में अटल निश्चय है। लेकिन अटल निश्चय होने के बाद में ये जो व्यर्थ समय हमारा समय खा लेते हैं या नेगेटिव विचारधारा में हम चले जाते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। और हम अब ऐसे समय में खड़े हुए हैं, बाबा ने कहा अचानक ही कई घटनाएं घटेंगी और तुम्हें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो अचानक की घटना में हमें मदद कौन करेगा? ये हमारा बहुत समय का अभ्यास हमें मदद करेगा। वो कौन सा अभ्यास है? कि व्यर्थ संकल्पों को जीतने का आपके मन के अंदर शक्ति हो, पावर हो, व्यर्थ संकल्पों के ऊपर अंकुश हो। और उसके लिए भी चाहिए कि उसके लिए वेरीफाई कैसे करें, ये व्यर्थ संकल्प हैं और ये मेरे लिए कष्टकारक हैं या मेरे लिए नुकसानकारक हैं, वो है हमारे बाबा की श्रीमत। और बाबा ने इसके लिए कई मुरलियों में बताया, वो श्रीमत हमारी बुद्धि में रहे उसके लिए जरूरी है। अमृत वेला तो उठते हैं, वो वरदानों की वेला होती है, और उस वरदानी समय में हम जो आत्माएं थक गई थी दुनिया में चलते चलते 63 जन्मों में भक्ति करते करते थक गए थे, वो वरदानी बेला में भगवान हमको इतनी शक्ति दे देते हैं, वरदानों से भरपूर कर देते हैं कि वो बेला ही हमारे को पूरे दिन के लिए शक्तिशाली बना देती है। हम खुशी में भर जाते हैं और हम बाप के अपने को करीब महसूस करते हैं। दूसरा पुरुषार्थ क्या है कि अमृत वेले के बाद में हम भगवान की पढ़ाई पढ़ने के लिए भले थोड़ा दूर पैदल करके जाना पड़े या बाइक से जाना पड़े, गाड़ी से जाना पड़े, हम बाबा की मुरली सुनने अपने सेवा केंद्र पर जाते हैं, और जो संगठन में बैठ के हम मुरली सुनते हैं वो शक्ति बहुत वंडरफुल होती है। कोई लोग कहते हैं हम मुरली तो अपने घर पे ही बैठ के सुन लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है जो घर में बैठ के मुरली सुन लेते हैं वो लौकिक में बहुत फंसे रहते हैं। तो जो हम संगठन में बैठ के भगवान के महावाक्य सुनते हैं और उसमें और उस मुरली को हमने बड़ी दादियों का अनुभव देखा है, हम भी दादियों के बीच में रहे हैं, दादियों के हाथ में हमेशा मुरली रहती थी, सुबह तो मुरली पढ़ेंगे, शाम को तो मुरली, दोपहर में तो मुरली, खाली टाइम होगा, ऐसे मुरली पढ़ने से क्या होता है, हमारी मनन शक्ति बढ़ती है। देखो मैं उस समय मुरली पढ़ी थी लेकिन मेरे को ये पॉइंट मिस हो गया, फिर मुरली पढ़ेंगे तो वो पॉइंट फिर रिपीट होगा, रिपीट होने से हमारी मनन शक्ति बढ़ती है, और जितना जितना हमारे मन में बाबा की मुरली के श्रेष्ठ विचार मन में चलते रहते हैं हम व्यर्थ से बच जाते हैं, अटैक तो आएंगे और हमारे पेपर तो आएंगे, लेकिन हमेशा खुशी मनानी चाहिए, पेपर आया है मुझे अपलिफ्ट करने के लिए, ऊंचा करने के लिए ये पेपर आया है, तो आप को व्यर्थ से बचने के लिए मेरे संकल्प व्यर्थ ना जाएं, क्योंकि आपने अपने जीवन में लक्ष्य रखा है कि मुझको संकल्प से सिद्धि को प्राप्त करना है, मैं जो संकल्प किसी और आत्मा के लिए कर दूं वो उसके लिए सफल हो जाए, तो क्या होगा कि ये जितना जितना हम बाबा की मुरली को अपने अंदर मन के अंदर विचार करते रहते हैं, हम व्यर्थ की बातें अगर आती भी हैं तो तुरंत मेरे अंदर एक आंसर आता है, बाबा ने कहा था ना बच्चे ऐसे होता है तो मैं क्यों सोचूं, है ना, तो क्या होगा आपके मन के अंदर से व्यर्थ विचार निकलने लगेंगे, और समझो अगर आपके साथ कोई नेगेटिव व्यवहार कर रहा है वो नाजायज है तो भी आप क्या सोचेंगे, बाबा ने तो कहा है ना ये मेरा हिसाब किताब है, पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब है, मैं क्यों सोचूं। अभी थर्ड प्रश्न ये आता है कि समझो अगर कोई आत्मा मेरे साथ गलत व्यवहार करने के लिए बहुत वातावरण बना रही है तो उस समय मुझे क्या करना है। बाबा ने इतनी अच्छी बात बताई, बच्चे ये आत्माएं सब थके हुए हैं, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कोई तुम्हारे लिए बुरा नहीं करने वाले हैं, ये आत्माएं अपने अपने संस्कारों से थक गए हैं। मेरा संस्कार क्या होना चाहिए कि मैं जब अमृत वेले बाबा की याद में बैठूं, उस आत्मा को इमर्ज करके बाबा की किरणें उसको देते जाएं, जो वरदान आपको मिल रहे हैं ना उसमें उसको भी शेयर करते जाएं कि तुम हे आत्मा, तू तो भगवान की नजर में बहुत अच्छी आत्मा है, तू तो प्यारी आत्मा है, तू क्यों अपनी स्थिति को खराब कर रही है ना, तो अच्छे अच्छे विचार उसको, भले आपको विचार ना भी चल रहे हो आप ऐसा जरूर महसूस कीजिए कि आपके अंदर वो सफेद किरणें आपके माथे से निकल रही हैं और उस आत्मा के प्रति जा रही है। देखो आप उसके लिए बुरा सोचने से बच गए कि नहीं बच गए। और दिन में भी अगर हम सोने जाते हैं, आराम करने जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये हमारे लिए एक होमवर्क होता है, मैं उस आत्मा को शक्ति का दान दूं, बाबा से योग करके उस आत्मा को योग का दान दूं। तो क्या होगा, आप बिजी भी हो गए, आपको बाबा की याद भी आ रही है और आप उस आत्मा के लिए कुछ गलत ना सोच के उसको जीए दान देते जाएंगे अपने योग बल के द्वारा। इसी तरह से जब हम निमाशान में शाम में हम योग करने बैठते हैं तो हम अनेक आत्माओं को योग का दान देते, क्योंकि आजकल आप देखो तो अकाले मृत्यु बहुत हो रही है। बिचारों के कितनों के जैसे स्थिति बिगाड़ के चले जाते हैं, उनके घर वाले जो उनके ऊपर पराश्रित होते हैं बेचारे दुखी होते हैं, वो भी भटकते रहते हैं सब। हमारा काम क्या है, निमा शाम में जब हम बैठते हैं ऐसी आत्माओं को योग का दान देते हैं, बाबा से ऊपर से किरणें आ रही हैं और हम उन किरणों को बाबा के लेके हजारों आत्माओं को योग का दान देते हैं। समझो अगर मन नहीं भी लगता उस सेवा में तो उन आत्माओं को योग का दान दे जो हमारे प्रति थोड़ा भी नेगेटिव है। तो सोचो आपको अपने संकल्पों को अगर बचाना है, जैसे प्रकृति में हम लोगों को क्या सिखाया जाता है, जल को बचाओ क्योंकि जल तुम्हारे कार्य में आना है, उसको स्वच्छ करो, है ना। तो हम फिल्टर लगाते हैं अपने यहाँ, इसका गार्ड लगाते हैं कि भाई हमें जल स्वच्छ मिलना चाहिए। ऐसे हमारे अंदर के विचार भी मेरी आत्मा रूपी मन को कैसे मिलने चाहिए, आप लोग बताओ। स्वच्छ मिलना चाहिए और अपने मन के विचारों की हमें बचत करनी है, है ना। तो उसके लिए जरूरी है, बाबा ने तो बहुत सहज बताया है, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना करो। अभी आप कहेंगे कि परिवार में रहते हुए समाचार भी सुनना पड़ता है, देखना भी पड़ता है लोगों को, तो हम क्या करें। बाबा ने कहा उस समय तुम अपने ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा को सामने रखो अपने मन के आगे। मेरे आगे बाबा है ना, ये तो बाबा ने कितना अच्छा ज्ञान सुनाया है कि संसार एक नाटकशाला है और उसमें हम लोग खेल खेल रहे हैं, तो वो आत्मा भी खिलाड़ी, उसका पार्ट ही ये है। आज रावण का पार्ट देख के हम लोग हंसते हैं कि नहीं, रामलीला में राम का पार्ट देख के हम लोग हंसते हैं। क्यों हंसते हैं, क्योंकि उनको प्ले कैसा चल रहा है वो हम देखते हैं। इसी तरह से हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, हम क्यों परेशान हैं। हम किसी के लिए ना तो नेगेटिव सोचें, ना हम किसी के लिए थोड़ा सा भी नेगेटिव बोलने की भी कोशिश ना करें, नेगेटिव देखने की भी कोशिश ना करें। बहुत सारी बातें हमारे मन में होती हैं, बट स्टॉप, ओ अभी मैं बिजी पर्सन हूँ। क्यों बिजी पर्सन हूँ, उसका कारण है मुझे जो मिला है वो अमूल्य है। मुझे कौन मिला है, बाबा मिला है। ऐसे भगवान का दर्शन करने के लिए, ऐसे भगवान को पाने के लिए मैंने इतनी अखंड भक्ति करी, श्रेष्ठ जन्म प्रभु तुम मिल जाओ। इस जन्म में भी बहुत चाहती, प्रभु तुम कहाँ हो, तुम मिल जाओ। पता नहीं क्यों आत्मा को इतनी चाहती, प्रभु तुम मिल जाओ। तो वो कौन है जो मुझे मिला है, वो मिला है मुझे जो मुझे सब तरह से सजाने के लिए आया है। और उस भगवान ने कह दिया है तुम ही तो हो मेरे लाडले बच्चे, कोटो में कोई हो तो मैं अपने शान को क्यों भूल जाऊं। वो मुझे उस शान से देखता है, तुम मेरे कोटो में कोई बच्चे हो, तो उसने मुझे चुन लिया है। इसलिए चुन लिया है, एक जैसे मूर्तिकार होता है ना, वो थोड़े थोड़े पत्थरों को चुनता है और उसको बहुत देर तक देखता है, उलट पुलट के देखता है कि इसकी कौन सी मूर्ति बनाऊं तो लोगों को पसंद आएगी। हम भी भगवान को पड़े हुए वही रतन मिल गए। अब भगवान अपनी शक्ति से मेरे को तराश रहा है, अंदर ही अंदर परिवर्तन कर रहा है और प्यार से कहता है बच्चे तुम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर दो तो मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। तुम चाहो ना चाहो मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो आप बताओ, आप क्या सिद्धियां नहीं चाहते हो? आप क्या नहीं चाहते हो मुझे मन की सिद्धि मिले, मुझे तन की सिद्धि मिले, मुझे साथ साथ वाणी की सिद्धि प्राप्त हो और मुझे दृष्टि की सिद्धि प्राप्त हो? आज हम अपनी दादियों को हमने नजदीक से देखा है, उन्होंने हाथ से उठा के जो कुछ दे दिया वो वरदान हो जाता था हम लोग के लिए। वो दृष्टि देती थी तो हमारे मन की जो चंचलता थी अर्थात अशांति थी वो खत्म हो जाती थी, शक्ति शांति आ जाती थी। हमारी दादियों की दृष्टि में शक्ति थी, सिद्धि थी, मन की सिद्धि थी, वो जिसके लिए संकल्प जो करती थी वो होके रहता था। बस वो किसी रतन को चुन ले कि तुम मेरे लायक हो। तो क्या हम वो सिद्धियां नहीं प्राप्त करना चाहते हैं? आप कहेंगे इस जन्म में प्राप्त कर लेंगे तो क्या फायदा होगा, लेकिन ये बाबा ने कितनी बार बताया है बच्चे ये जन्म जो तुम्हारा है ये फाउंडेशन है, माना बीज रूप हो तुम। इस जन्म में आपने जितना अधिक बाबा से फायदा ले लिया अर्थात मन शुद्ध कर लिया, मन की सिद्धि प्राप्त कर ली, तन की सिद्धि प्राप्त कर ली, धन नहीं कह रही हूँ, वाणी की सिद्धि कि आप किसी के लिए एक शब्द कहेंगे वो उसके लिए वरदान हो जाएगा। दृष्टि, आज आप देखो हम लोग भोग लेते हैं, दृष्टि से भोग लेते हैं। क्यों लेते हैं दृष्टि का भोग? क्योंकि सिद्धि स्वरूप आत्मा आपको जल पिला रही है, भोग दे रही है, न जाने वो कहाँ आपके काम में आ जाए। तो हमें जब भगवान इतनी सारी सिद्धियां देने आया है, भगवान तो यहां तक कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें कोहिनूर हीरा बनाने के लिए आया हूं। तो हम अपने से पूछा करें, कभी कभी किसी किसी को शिकायत होती है कि रात में नींद नहीं आ रही थी। अरे मैं तो कहती हूँ इतनी अच्छी टेबलेट बाबा ने दे रखी है, नींद ना आए ये तो बहुत खुशी की बात है। क्यों? अपने को होमवर्क दे दो, मैं बाबा को याद करूंगा, फलानी आत्माओं को योग का दान दूंगा, मैं बाबा को याद करूंगा दूसरी आत्माओं को योग का दान दूंगा, मैं बाबा को, ये मेरे लिए तो बहुत कीमती समय है कि मेरा बाबा से योग लग रहा है तो मेरा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, मेरी आत्मा शुद्ध बन रही है, लेकिन मैं जिसको योग का दान दे रहा हूं उस आत्मा का भला हो रहा है और मेरा समय सफल हो रहा है। आप देखो आप तीसरे तक योग देते देते आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा आप कहां चले गए। अगर कोई लोग अनुभवी होंगे तो वो जानते होंगे। तो रात का समय भी हमारा कमाई का है और दिन का समय भी कमाई का है कि भोजन कर रहे हैं तो बाबा कहता है बच्चे दृष्टि दे के भोजन करो, है ना। तो स्टॉप वेट एंड सी, हम रुकते ऐसा नहीं फटाफट खाना शुरू कर देते, खाना मिला प्यार से दृष्टि दी। आओ बाबा, आप भी हमारे साथ स्वीकार करो। बोले ये बात अच्छी है कि नहीं है कि बाबा आप भी स्वीकार करो? तो बाबा स्वीकार नहीं करेगा क्या? स्वीकार करेगा। इतना प्यार से बुलाओ बाबा से को, जैसे एक बच्चा था उसका माँ बाप छोड़ के गया कि तुम गोपाल जी रखे हैं, गोपाल जी को रोज भोग लगाना। उसने कहा अच्छा। अब उसने एक दिन भोग बना के रखा, गोपाल जी तो आए नहीं। अब वो भी भूखा सो गया, गोपाल जी को हमारा खाना नहीं पसंद आया। दूसरे दिन उसने हलवा बनाया, गोपाल जी आ जाओ भोग तो लगा लो, नहीं आए गोपाल जी। अब वो ऐसे ही सो गया। ऐसे करते करते दो तीन दिन हो गया, वो कभी खीर बनाता था कभी रबड़ी बनाता था, गोपाल जी आते ही नहीं थे। एक दिन उसने कुछ और बनाया, गोपाल जी के लिए पूरी कचौरी बनाई, कहा शायद गोपाल जी को पूरी कचौरी पसंद है। गोपाल जी आके खड़े हो गए, कहा तुम भी खाओ हम भी खाएं। बोलो इतना प्यार से हम बाबा को भोग में बुलाते हैं क्या कि बाबा आ जाओ, बाबा मेरा भोजन कर लो, मेरा नहीं तुम्हारा है, तुम्हारा दिया हुआ हम खा रहे हैं। अपने से पूछो, जब हम इतना प्यार से बाबा को बुलाएंगे बाबा जरूर आएंगे। इतना वो हमें प्यार करता है, हम भूल जाते हैं, वो हमें नहीं भूलता है, बाबा जरूर आएंगे। तो रात में हमेशा ये सोचो, मुझे कौन मिला है, कौन मिला है जो शहंशाहों का शहंशाह है, जो मेरे को दिव्य मूर्ति बनाने वाला है, जो मेरे भाग्य के भंडारी खोलने वाला है। एक जन्म नहीं, मैं तो कहती हूँ मेरे 84 जन्मों का भाग्य वो जगाने वाला है, वो सब कुछ मेरे लिए करने वाला है। मैं जो चाहूँ ना चाहूँ उसको मालूम है, मेरे को अपने इस बच्चे को कैसे बनाना है ना। तो जैसे निश्चिंत कर दिया उसने, तो जैसे बाबा की मुरली में आता है कि बच्चे अभी बहुत खराब समय आएगा, अचानक ही तुम बच्चों के सामने अनेक परीक्षाएं आएंगी, तो उस समय फुल स्टॉप लगाना ही जरूरी होगा। कभी कभी ऐसा होता है कोई हमारे पास आके ज्ञान सुनना चाहता है, वाणी से हम उसको ज्ञान सुनाने का बहुत मार्जिन होता, हम नहीं सुना पा रहे हैं। तो बाबा कहते मनसा सेवा करते रहो उस आत्मा की, है ना। तो हमारे पास तो वर्क ही बहुत है कि नहीं है। तो इसलिए हर समय ये सोचो, मुझे कौन मिला है, मेरे को ऐसा सौदागर मिला है जो मेरे अंदर तो कुछ नहीं था, पता नहीं कितनी कौड़ियां थी, उसने कहा लाओ बच्चे तुम मुझे दे दो। हमने कौड़ियां दी और वो बदले में हमें क्या देता है, इतना भारी बैंक बैलेंस भर देता है, हमको भी नहीं मालूम वो क्या दे रहा है। बोलो ऐसी बात है कि नहीं है। तो बाबा मुझे ऐसा मिला है, बाबा मुझे ऐसा मिला है, मेरे मन के अंदर पूरे दिन रट लगी रहे, अरे मैं जो चाहूं बाबा मुझे देगा। वो आया ही, वो तो सर्वशक्तिवान है संसार का, वो आया ही इसलिए है। हमेशा ये सोचो वो मेरे खातिर आया। तो आपका मन किसमें डूबा रहेगा, किसमें डूबा रहेगा? पूरा दिन बाबा में डूबा रहेगा, वो मेरे खातिर आया है, मेरा भगवान है, मेरा पिता है, वो मेरे पुकारने पे आ गया, ये मेरा भाग्य है। लेकिन बाबा कहता बच्चे मैं केवल अकेले के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सारे संसार का उद्धार करने के लिए आया हूँ, अभी हमारे ऊपर एक वर्क रह गया है। लोगों ने ये तो समझा है या ये ब्रह्मा कुमारियों के भगवान हैं, ये ब्रह्मा कुमारी हैं, ये ब्रह्मा कुमार हैं, बट उनको अभी क्या समझना बाकी है, मेरा भगवान आ गया है, मेरा भगवान आ गया है। उसके लिए हम लोगों को गली गली मोहल्ले मोहल्ले, है ना, कस्बा कस्बा गांव देहात में जाके बाबा का परिचय फैलाना है, कोई बच्चा रह ना जाए हमसे कभी ऐसी, उसने कभी लास्ट में ये शिकायत ना करे कि हमने ढूंढा था भगवान को लेकिन आपने तो हमें भगवान बताया ही नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी एक बहन को मेरे पास आना था और वो सेंटर का एड्रेस ढूंढ रही थी, लेकिन उसने गूगल पे डाला और गूगल पे डालने पे सेंटर का एड्रेस आ गया और वो सेंटर पे पहुंच गई। तो बाबा ने अभी हम बच्चों को क्या बताया, बच्चे ये जितने भी साइंस के साधन निकल रहे हैं ये तुम बच्चों को बहुत मदद करेंगे, है ना। लेकिन हमारे अंदर विवेक होना चाहिए, हम सीरियल कोई गलत ना देखें, वीडियोस कोई गलत ना देखें। अगर हमें दृष्टि की सिद्धि चाहिए तो दृष्टि की सिद्धि क्या होती है कि हम जिसको दृष्टि दे दें उसकी बीमारी निकल जाए, हम जिसको दृष्टि दें उसके अंदर खुशी आ जाए, उसका दुख दूर हो जाए, उसके दिल का दुख दूर हो जाए, दृष्टि से सृष्टि बने, अर्थात वो आत्मा भगवान की बन जाए। हम किसी को दृष्टि दे और वो अपना भाग्य बनाने लगे भगवान से, ये क्या कम बात है। लेकिन उसके लिए जैसे हमें अपने संकल्पों की बचत करनी है वैसे हमें अपनी दृष्टि की भी बचत करनी है। कैसे आजकल मोबाइल इतनी बड़ी, बहुत से लोग कहते हैं माया है, हम लोग कहते हैं साधन है। मोबाइल में अगर हमने देखा उसमें कई तरह के वो आते हैं, हमने देखा ये मतलब की चीज नहीं है, देखो ही नहीं, नेवर अपने पे, फिर मन कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब है कि हम कमजोर हैं, नेवर। दृष्टि से सिर्फ देखो, जैसे ब्रह्मा बाबा था, ब्रह्मा बाबा की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जैसे अभी हम दादियों से उनका अनुभव सुनते हैं, दीदियों से अनुभव सुनते हैं, तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि ब्रह्मा बाबा बच्चों को पत्र लिखते थे तो उन बच्चों की बाबा को आत्मा दिखाई देती थी। बाबा के कमरे में कोई आके धीरे से पर्दा हटा के देखता था तो बाबा को उसकी आत्मा दिखाई देती थी। ब्रह्मा बाबा ने इतना आत्मा का पाठ पक्का किया हुआ था और स्वयं तो वो उस परमात्मा शिव बाबा के ध्यान में डूबा ही रहता था और बाबा उनको साक्षात्कार कराते थे कि बच्चे तुम कल मिचनू कृष्ण बनने वाले हो, तो उनके अंदर वो खुमारी चढ़ी रहती थी, बाबा मुझे ये बनाने वाला है। तो सोचो ब्रह्मा बाबा ने अपने मन को कितना शक्तिशाली बनाया होगा कि आने वाली हरेक आत्मा को बाबा ने आत्मा के रूप में देखा। और किसी को गरीब आत्मा है, किसी को अमीर आत्मा है, इस दृष्टि से भी नहीं देखा, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा कल्प पहले का बिछड़ा हुआ मेरा प्यारा बच्चा है, बाबा ने उस दृष्टि से देखा। वो प्यार के सागर बाबा ने किसी को काला नहीं देखा, किसी को गोरा नहीं देखा, ये मेरा बच्चा है। गरीब बच्चा भी आता था, ये मेरा बच्चा है। हम थोड़ा सा ब्रह्मा बाबा के साथ अपने को कंपेयर करें, क्या हमारी दृष्टि वहां तक पहुंची है कि हरेक को हम आत्मा के रूप में देखने के अभ्यासी पूरे बने हैं कि नहीं बने हैं। हरेक कोई अपने से पूछे, आत्मा का अभ्यासी बनने के लिए बाबा ने एक बात बताई अव्यक्त वाणियों में, देह अभिमान हमारा पेपर लेता है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस देह अभिमान में रहते हैं। आप लोग तो समझते होंगे देह अभिमान ही रावण का जनक है। देह अभिमान में आना आई एम सच एंड सच, मेरी बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मेरी बहुत बात मानी जानी चाहिए। लेकिन अगर हमने अपने देह अभिमान रूपी चक्रव्यूह को जीत लिया होता है, तोड़ दिया होता है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने तोड़ा, मैं तो एक आत्मा हूँ, कहाँ तो वो कितना बड़ा जवेरी था ब्रह्मा बाबा। हम लोग को तो सोच सोच के आश्चर्य लगता है। और एक सेकंड में जैसे ही शिव बाबा के साथ उनका आत्मसात हुआ, बस उसके प्यार में डूब गया, वो ये भूल ही गया कि मैं कोई हूँ, वो आत्मिक भाव में डूब गया, इतना बाबा के साथ प्यार में डूब गया ब्रह्मा बाबा। हम भी क्यों नहीं ब्रह्मा बाबा के समान उस बाप के प्यार में डूब जाएं? ये देहाभिमान मतलब का नहीं है भाई साहब, ये नेगेटिविटी बहुत पैदा करता है और हमको कष्ट भी देता है बहुत, है ना। तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात हमको सिखाई, तुम दाता के बच्चे हो, तुम देना शुरू करो, देने वाले दाता बनो, लेने वाले नहीं बनो। आप कहते मैं तो किसी से लेता ही नहीं हूं कुछ, लेकिन सूक्ष्म में इच्छा रहती है, फलाना सामने वाला मुझे प्यार दे, कुछ नहीं तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दे, कुछ नहीं तो थोड़ा प्यार से बोल दे, कुछ नहीं तो मुझे बैठने के लिए स्थान दे दे। बोले ये सूक्ष्म छोटी छोटी बातें हमारे मन में आती हैं कि नहीं आती? आती। ये जो चाहना है ना दूसरों से लेने की, ये चाहना ही हमें देवता नहीं बनने देती। आज हम अपनी दादियों को देखते हैं, बहुत निर्माणशील, और फिर भी वो हमेशा सबको देती थी। कितना उन्होंने कभी उफ नहीं किया, कैसे बैगरी टाइम में भी उन्होंने थोड़ा सा भोजन खा के अपना टाइम पास किया और बाबा की सेवा में लगी रही। कहते थे जैसे बड़े कहें हमें तो वैसे ही करना है, बाबा की सेवा में लगी रही दादियां। और कितनी तपस्वी मूर्त थी कि बाबा उन्हें 12-12 घंटा योग में बैठने का एक आदेश देते थे, संदेश देते थे, और वो खुशी से बैठते थे। इसलिए ये जो पुरानी आत्मा हो गई है, इसके अंदर जो देह अभिमान का बहुत बड़ा पुराना संस्कार है, इसको मिटा के ब्रह्मा बाप के समान हर कोई को किस रूप में देखो? आत्मा के रूप में देखो। तो हमारी दृष्टि कैसी हो जाएगी? जैसे ब्रह्मा बाबा की दृष्टि सिद्ध स्वरूप थी, ब्रह्मा बाबा ने जगदीश जी जब आए, जो उन्होंने हमारी सारी स्क्रिप्ट लिखी है, सारा लिटरेचर लिखा है, बाबा ने थोड़ा उनका टेस्ट जरूर लिया, लेकिन जब वो टेस्ट में पास हो गए तो उनको नाम दिया संजय। कितना बुद्धिमान रहा होगा वो जगदीश भाई जी। तो ब्रह्मा बाबा की दृष्टि में सिद्धि थी, और वो सिद्धि का कारण था कि ब्रह्मा बाबा ने बहुत मेहनत की होगी लेटर लिखने में, यशोदा आत्मा है, रामा आत्मा है ना, अनेकों का नाम लिख के बाबा लिखता था, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, और मैं भी आत्मा हूँ। देहाभिमान टूट गया ब्रह्मा बाबा का, और ब्रह्मा बाबा के जीवन के लिए कहते हैं उन्होंने अपने जीवन में किसी को दुख नहीं दिया। वंडरफुल बात। हम लोग जाने अनजाने में नहीं भी चाहते हैं तो भी हमारे द्वारा किसी को दुख मिल जाता है, और ब्रह्मा बाबा इतनी श्रेष्ठ आत्मा थी, श्रेष्ठ आत्मा थी, इतनी जैसे कहना चाहिए दयालु आत्मा थी, इतनी गुणवान आत्मा थी ब्रह्मा बाबा कि उन्होंने हर आत्मा की शक्ति को पहचान के उनके साथ वैसा ही। अभी बाबा की तो बहुत सारी कहानियां हैं, मैं सुनाऊंगी तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो बाबा ने हर आत्मा को सुख दिया, अगर किसी ने गलती भी की तो ब्रह्मा बाबा ने उस बच्चे को सुलझा लिया, बट उससे कोई कठोर शब्द नहीं कहा। ये बहुत बड़ी विशेषता थी ब्रह्मा बाबा में, और यही कारण है वाणी की सिद्धि ब्रह्मा बाबा ने पाई। वो जिसको जो बोलते थे वो उसके लिए वरदान हो जाता था। दृष्टि की सिद्धि ब्रह्मा बाबा ने पाई, वो जिसके ऊपर दृष्टि डाल देते थे ओहो सौभाग्य, वो धन्य धन्य हो जाता था। अभी हम अपने को कंपेयर करें किसके साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ। ये तो हम चाहते हैं कि हमको दृष्टि की सिद्धि प्राप्त हो, हमको वाणी की सिद्धि प्राप्त हो, हमको संकल्पों की सिद्धि प्राप्त हो, चाहते हैं ना? बोलिए चाहते हैं ना? चाहते हैं ना? सिद्धि का मतलब कि उससे अपना भी भला हो, दूसरों का भी भला होने लगे, हम किसी के लिए अच्छा संकल्प करें, उनको हमारे से सुख मिल जाए। कितने तो आज कष्ट में हैं बीमारी के कारण, हम एक बार उनको देख लें, एक बार पानी पड़ के दे दें, उनका कष्ट दूर हो जाए। बोलिए संकल्प की सिद्धि की जरूरत नहीं है आज के संकल्प आज की दुनिया में? तो ये हम अपने दिल से सोचें कि हमको इतना बड़ा सर्वशक्तिवान भगवान मिला है, जिसने आते ही आते कह दिया तुम्हें जो चाहिए तुम मेरे से ले लो, तुम्हें जो चाहिए तुम मेरे से ले लो। हम सोचते हैं हमारा बिजनेस अच्छा चल जाए, हमारी सर्विस, हमारा फलाना मित्र हमारे से ठीक हो जाए। बाबा ने कहा तुम खुद ही मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुमको मैंने युक्तियां बताई हैं, तुम वैसे ही अप्लाई करो। अमृत वेला बाबा से हम अमर भव का वरदान लो, अमृत वेला बाबा से वरदानों की नौछावर होती है। मुरली पढ़ते हैं तो ज्ञान सागर से ज्ञान सरोवर जैसे हम ज्ञानी आत्मा बनते हैं। तो हमें तीन शक्तियां मिली, बाबा का प्यार मिला, ज्ञान सागर से ज्ञानी मन हमारा ज्ञानी तू आत्मा बना, और तीसरा हमें भगवान के वरदानों की बौछार हो गई। और सच पूछो तो परमात्मा प्यार हम ब्राह्मण बच्चों को ही प्राप्त होता है। भक्त लोग भले अनेकों की पूजा करते हैं, लेकिन सच्चा भगवान का प्यार हम ब्राह्मणों को प्राप्त है। वरदानों की वर्षा हम बच्चों के ऊपर ही हो रही है, और सच्चा सच्चा ज्ञान सागर से हम ज्ञान रतन ले रहे हैं। ये हमारे लिए फाउंडेशन है इस जन्म। जो अभी हम अपने संस्कार बना लेंगे वो कई जन्मों तक हमें रॉयल फैमिली में स्थान दिलाएंगे, राजा महाराजा की फैमिली में स्थान दिलाएंगे। अभी जो हमारे मन की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी, अनेक जन्मों तक हम बहुत समाज के अंदर बहुत विशेष आत्मा माने जाएंगे। दृष्टि की शक्ति अगर सिद्धि हमें मिल जाएगी इस जन्म में, तो हर जन्म में लोग हमारे सामने आएंगे और उनको हमारे से शक्ति मिलेगी। हम बहुतों के बीच में महान आत्मा गिने जाएंगे। वाणी की शक्ति अगर हमें प्राप्त हो गई, सिद्धि प्राप्त हो गई, तो अनेक जन्मों तक हम बहुतों के लिए सिद्ध पुरुष के रूप में माने जाएंगे। बोलिए आप लोग क्या नहीं चाहते हैं कि हम इस विश्व रंगमंच पर हम विशेष आत्मा बन के दिखाएं? क्या आप लोग नहीं चाहते हैं? इतना बड़ा भगवान आया हुआ है और वो कहता है बच्चे मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, हम उसे क्यों छोड़ दें? अपने से पूछो, हम उसे क्यों छोड़ दें? तो सबसे बड़ी बात है कि हम उस प्यारे शिव बाबा के लिए बहुत बहुत थैंक्स दें, और जिस आत्मा ने आपको बाबा का बच्चा बनाया है वो भी रिगार्डेबल है, क्योंकि उन्होंने कम से कम आपको बाबा का स्थान तो दिखा दिया, बाबा का बच्चा तो बना दिया। और जितना जितना हम शिव बाबा के गुण गाते रहेंगे, ब्रह्मा बाबा के गुण गाते रहेंगे, उतना उतना हम सिद्ध पुरुष बनते जाएंगे। लेकिन कभी ना दृष्टि का दुरुपयोग करो कि हमको बाबा ने दृष्टि की सिद्धि दे दी है, तो अगर मैं तुमको कह दूंगा कि तुम अभी ऐसे हो जाओ तो गुस्से में आके, तो उसका बुरा हो जाएगा। ये दृष्टि का कभी दुरुपयोग नहीं करना। समझो अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ गलत कर रहा है और आपने मन में क्रोध के वश होके मन का संकल्प किया कि तुम्हारा बुरा हो जाए, उस मन का भी दुरुपयोग न करो, नहीं तो तुम्हारी सिद्धियां सब चली जाएंगी। और वाणी का भी दुरुपयोग नहीं करो, जैसे हम लोग बिना सोचे बोल देते हैं। बाबा ने मुरली में बताया था, पहले सोचो फिर बोलो। और आपने देखा होगा कि जितने सिद्ध पुरुष होते हैं वो वाणी को बहुत कम प्रयोग करते हैं, और अगर वाणी से बोलते भी हैं तो सदे हुए बोलों में वो दूसरों से बात करेंगे। किस लिए बात करेंगे? कहीं मेरे मुख से इसके लिए कुछ गलत ना निकल जाए। तो बाबा ने कहा, आपके पास जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे मन की शक्ति है, चाहे तन की शक्ति है, चाहे आपके पास बुद्धि की शक्ति, किसी के पास बुद्धि बहुत अच्छी होती है और वो बहुत अच्छा प्लानिंग भी कर लेते हैं और बहुत अच्छा दूसरों को राय भी अच्छी दे देते हैं, कोई भी शक्ति अगर आपके पास है तो उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है। किस रूप में करना है ये सोचो। ये भगवान ने हमें शक्ति दी है और ये भगवान की दी हुई शक्ति का, क्योंकि उसके लिए तो हर एक आत्मा उसका बचा है, तो मेरे लिए अगर मेरी दृष्टि में किसी के लिए बुराई आ गई तो मेरा दोष हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को अभी सबको अंदर से परिवर्तन की एक अपने अंदर धारा बहानी है कि क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो हमें ईश्वरीय लॉ मिले हैं, जो ईश्वरीय मर्यादाएं मिली हैं, हमें उससे हट के कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो मेरे पीयू को पसंद ना हो। मेरा पीयू कौन है? जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है वो मेरा पीयू है, और वो मेरे लिए आया है, मुझे सुधारने के लिए आया है। मैं डायमंड लाइक बन जाऊंगा तो वो मेरे लिए मुझे बहुत कुछ मना, मेरे लिए हर समय मेरा संसार बहुत सजा रहेगा और अच्छा रहेगा। तो मैं इस बातों के लिए, मेरे को पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे। एंड वैल्यू योरसेल्फ, कि आपकी वाणी भी बहुत शक्तिशाली है, आपका मन भी बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उस परमात्मा के बच्चे बन गए हैं। आपकी दृष्टि भी बहुत वैल्यूबल है, एंड आपके हाथ, ये जो आपके हाथ हैं, इनसे आप किसी को प्रसाद देते हैं, कोई बाबा का बहुत बड़ा कार्य करते हैं, किसी को वाणी से प्रदर्शनी समझाते हैं, प्रदर्शनी के चित्र लगाते हैं, कोई और सेवा करते हैं, ये हाथ भी आपके वरदानी हैं। इन हाथों से भी कुछ ऐसा नहीं करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिससे किसी दूसरी आत्मा को कुछ कष्ट मिले, हमेशा हाथ हमारा देने वाला रहे और हम दूसरों को, हमारा एक ही मोटो हो, क्या मोटो हो, हमें हमेशा हमारे से दूसरों को सुख देना है, दुख नहीं देना है। हमेशा क्या देना है हमको, अपनी वाणी से, अपने संकल्पों से, अपनी दृष्टि से और अपने हाथों से हमेशा क्या देना है, सुख देना है। और कोई छोटा है या बड़ा है, कुछ भी है, अगर वो हमें सेवा के लिए बुलाता है तो अपने पैरों के द्वारा भी जाके उसकी सेवा में शामिल होके उसको मदद करनी है और हमें सुख देना है। ठीक बात है ना, आप सबको पसंद आई ना ये बात कि हमको भगवान मिला है तो हमको सिद्धि स्वरूप बनना है ना। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग सब लोगों के ऊपर भगवान की बहुत वरद हस्त है जो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, है ना। जब पूरा का पूरा ग्रुप आता है तो ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल पाती है, फिर भी बाबा दिला देता है और बच्चे लोग आ जाते हैं, तो ये बहुत ही सहज बात है। तो इसलिए अपने अंदर की जो हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियां हैं, जो छिपा हुआ आत्मबल है, जो भी है, उसको डाउन ना करो, उसको बढ़ाते चलो और अपने को भी देखो कि मैं कौन, है ना। हमारी दादी जानकी कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। ओम शांति।
सब चिंता फिकर ये दुनिया से हम